सिद्धार्णम् नमो आयिर्यार्णम् नमो वज्जायार्णम् नमो लोये सौवसाहूणम् एषो पञ्च नमो यारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येषीं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम् पंच परमेष्ठी भगवान की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की अनायतनों का प्रकरण चल रहा है। अनायतन का तात्पर्य है जो आत्म कल्याण के मार्ग में हमें किसी प्रकार से सहयोग के रूप में निमित्त नहीं बन सकते उनको अनायतन बोलते और आयतन का तात्पर्य जो हमारे आत्मकल्याण के मार्ग में संगति के रूप में या कोई सहयोग के रूप में काम में आ सकते हूं उनको आयतन कहते हैं। आयतन की संगति से हमारे सम्यक दर्शन में हमारे सम्यक ज्ञान में व हमारे सम्यक चारित्र में सहयोग मिलता है। कैसा सहयोग? उस सम्यक दर्शन को देखकर हमारे सम्यक दर्शन में निर्मलता बढ़ती है। बाहर के उनके सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र को देख करके हमारे लिए भी उसका असर आता है कि हमें भी ऐसा ही सम्यक दर्शन निर्मल पालन करना चाहिए, ऐसा ही ज्ञान बढ़ाना चाहिए, ऐसा ही संयम धारण करना चाहिए। इस प्रकार गुणों की संगति से गुणों का असर आता है और दोषों की संगति से दोषों का असर आता है। गुण ही आयतन कहलाते हैं और दोष ही अनायतन कहलाते हैं। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ये दोष कहलाते हैं, सो अनायतन है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र गुण कहलाते हैं, सो ये आयतन है। अब जहां तक छह भेद इसके किए गए हैं तो छह भेद में ऐसा है कि सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चा शास्त्र, या यूं कह सकते हैं सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चा धर्म। धर्म जो है वह अहिंसा रूप है, अहिंसा रूप धर्म जिस शास्त्र में कहा हुआ हो वह धर्मशास्त्र है, और शास्त्र में यदि अहिंसा का कोई विवरण नहीं है, गुणों का कोई प्रतिपादन नहीं है और दोषों का ही प्रतिपादन है या हिंसा का ही प्रतिपादन है, तो हिंसा शास्त्र को आयतन के कोटि में नहीं रखते, अनायतन की कोटि में रखते हैं। शास्त्र वही सच्चा शास्त्र कहलाता है जिस शास्त्र में परमार्थ का कथन हो, सप्त तत्वों का कथन हो, मोक्ष मार्ग का कथन हो, शरीर नहीं आत्मा के कल्याण की बातें लिखी हों, उसको शास्त्र कहते हैं। कैसा शास्त्र? सच्चा शास्त्र। और जिस शास्त्र में पंचेंद्रिय विषयों को कैसे कमाना, कैसे भोगना, कैसे उनको बढ़ाना, ऐसी विद्या, पंचेंद्रिय विषयों को प्राप्त करने के लिए जो विद्या चाहिए, ऐसी विद्या जिन शास्त्रों से मिलता हो उनको सच्चा शास्त्र नहीं कहा, उनको कुशास्त्र कहा। विद्या तो ठीक है, संसार को चलाने का शास्त्र वही है, लेकिन आत्मकल्याण का शास्त्र वो नहीं है, इसलिए वो कुशास्त्र है। और आत्मकल्याण करने वाला शास्त्र सुशास्त्र है। आत्मकल्याणकारी शास्त्र में अहिंसा धर्म का कथन होता है, और संसार बढ़ाने वाले शास्त्र में हिंसा का कथन होता है। इसलिए दोनों शास्त्र होते हुए भी एक को सम्यक शास्त्र कहा और एक को मिथ्या शास्त्र कहा। अनायतनों के नाम में कुदेव पहले नंबर में रखा, कुगुरु दूसरे नंबर में और कुधर्म तीसरे नंबर में। कुधर्म का तात्पर्य यहां किसी संप्रदाय विशेष धर्म का नाम नहीं है। वो ऐसा नहीं समझना कि फलाना धर्म कुधर्म है। कुधर्म का तात्पर्य जिसमें हिंसा हो वो कुधर्म, जिसमें अहिंसा हो वो धर्म, सच्चा धर्म। कुधर्म यानी कुत्सित, जिसमें कमी हो, जिसमें दोष हो, दोषों की पुष्टि हो, दोष मार्ग पर चलने के लिए करता हो, उसका नाम कुधर्म। ये धर्म का स्वरूप है। और गुरु का स्वरूप कैसा है? गुरु गुरु कैसे होते हैं? विषय आशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरतः तपस्वी स प्रशस्यते। परमार्थ गुरु, आत्म कल्याणकारी गुरु, मोक्ष मार्ग में चलने वाले गुरु, ये कैसे होते हैं? तो परिग्रह से मुक्त रहते हैं, इनका पहला लक्षण है। हिंसा से रहित होते हैं। उस श्लोक के अनुसार ले लेते हैं तो विषय आशा वशाती, तो विषय यानी परिग्रह, परिग्रहों की आशा उनके मन में नहीं रहती, ये पहला लक्षण है। विषय आशा वश, विषयों की आशा से भी वशीभूत नहीं होते। विषय आशा वशाती तो निरारंभ, आरंभ यानी हिंसा, हिंसा के कार्यों को करने में तत्पर नहीं रहते। हिंसा के कार्य कब होते हैं? जब परिग्रह के प्रति हो जाए, परिग्रह के प्रति लगाव हो जाए, तो परिग्रह का ग्रहण हो जाए, तो आरंभ और परिग्रह हिंसा जनित कार्यों को करने का संदर्भ आता है। और परिग्रह यदि नहीं रखते हैं तो हिंसा करने का सवाल नहीं उठता। ये गुरु का लक्षण है। गुरु आयतन है, शास्त्र भी आयतन है और भगवान भी आयतन है। तो सच्चे भगवान का स्वरूप क्या है? वीतराग। एक ही शब्द में सच्चे भगवान का स्वरूप क्या है? वीतराग। और कुदेव का स्वरूप क्या है? तो उससे उल्टा राग द्वेष परिग्रह आदि जिस देव के होते हैं वो कुदेव है। प्रश्न उठता है कुदेव कहने से जिस जीव को देव की मान्यता हम बना लेते हैं, जिस आत्मा को या जिस जीव को देव की मान्यता देख करके हम पूछने लगते हैं, वह दो प्रकार का है। मनुष्य गति का भी हो सकता है और देव गति का भी हो सकता है। त्रिरंची गति का तो कोई नहीं बनाते। क्या बनाते? बनाते तो हैं, ये नाग देवता, नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा नहीं बनाते तो, नाग देवता और बैल देवता, बैल देवता, गो माता और कपी देवता, कपी देवता, बंदर। बंदर को भी देव मानते हैं, मर जाए तो मंदिर बांध करके उसकी भी पूजा होती है। त्रिरंची गति के जीवों को वैसे तो कोई साक्षात देव कहता नहीं है, लेकिन दो गति के जीवों को लोग देव कहते हैं, एक मनुष्य गति के जीवों को और एक किसी व्यक्ति को भगवान के नाम से कहते कि नहीं, व्यक्ति को, परिग्रहधारी व्यक्ति को ही भगवान कहना, ये कुदेव आरोप है। और किसी व्यक्ति में वीतरागता हो, पाप कर्मों को जिन्होंने नाश किया हो, घाती कर्मों को, तो उस मनुष्य को तो हम भगवान कह सकते, वो भी मनुष्य गति के तो हैं। जिन्होंने घाती कर्म को नष्ट किया हो, जिस मनुष्य ने केवल ज्ञान प्राप्त किया हो और घाती कर्म नाश होने से मोहनी कर्म पूर्णतः नष्ट हो ही जाता है, मोहनी कर्म को जीत लिया हो, तो उनमें वीतरागता भी पाई जाती है, सर्वज्ञपना भी है और सर्वज्ञपना वीतरागता होने से आप्तपना भी होता है। आप्तपना हितोपदेशीपना, हितोपदेश वही दे सकते हैं जिनके पास वीतरागता हो, जिनके पास सर्वज्ञ यानी केवल ज्ञान हो, सर्वज्ञ अवस्था हो। और इन दोनों के होने के कारण से वस्तु का ज्ञान, जगत का ज्ञान, तत्व ज्ञान स्पष्ट रहता है। केवल ज्ञान हो तो फिर क्या बात है, वस्तु स्वरूप का ज्ञान अति स्पष्ट रहता है। उस ज्ञान के कारण से उनमें आप्तपना रहता है। आप्त यानी हमारे लिए सत्संग के योग्य, आप्त शब्द पाहुनी के अर्थ में आता है, पाहुना संबंधी होता है। हाँ, आप्त यानी प्राप्त, हमने जिसको प्राप्त किया है गुणों को देखकर वो हमारे आप्त हैं, और जिसको हमने त्याग किया है दोषों को देखकर वो अनाप्त है। अनाप्त, आप्त और अनाप्त, अनाप्त त्याग के योग्य, आप्त ग्रहण के योग्य, सत्संग के योग्य। तो आप्त का ही हम प्रवचन सुनते हैं, दिव्य ध्वनि सुनते हैं, क्योंकि उनमें तीन मुख्य लक्षण हैं। सबसे पहले वीतरागता, वीतरागता के कारण से वो कभी भी बोलते समय पक्षपात नहीं करते, पॉलिटिक्स नहीं करते, दुनिया से मोह नहीं रखते, अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं करते, निष्पक्ष रहते हैं। निष्पक्ष व्यक्तित्व वीतरागता है, किसी के पक्ष में बंद करके नहीं रह सकते हो। वस्तु का स्वरूप जैसा है, हित के लिए जैसा चाहिए वैसा ही दुनिया के सामने उपदेश देते, ऐसे चलोगे तो कल्याण होगा, ऐसे चलोगे तो दुखी हो जाओगे, उसमें कम वेशी करके कुछ नहीं बताएंगे, थोड़ा थोड़ा इसको भी कर लो तो तुम सुखी हो जाओगे, स्वार्थवश कह दिया तो फिर वो पक्षपात के वचन है, अपने स्वार्थवश गलत भी कह दिया। तो अरहंत भगवंत में ये कभी संभव नहीं है, और वीतरागी मुनि में भी ये संभव नहीं है, क्योंकि पंच परमिष्टी हमारे वीतरागी हैं। जो वीतरागी होते हैं वो पक्षपाती नहीं होते, पक्ष किसका पकड़ लेते हैं, सत्य का, असत्य का पक्ष त्यागते हैं, असत्य पाप है तो पाप का पालन नहीं करते, सत्य का पक्ष लेते हैं कि मतलब ये भी तो पक्षपात है, अहिंसावादी तो रहते हैं, अहिंसा के पक्ष में आना भी तो पक्षपात है ना, विपक्ष है, पर हित के पक्ष में रहते। पक्षपात का मतलब क्या है, कभी हित के पक्ष में हो गए और कभी समय आ गया तो हिंसा के पक्ष में हो गई, दल बदलू नहीं रहते हो। जिस पक्ष से जीवों का हित हो सकता है उसी पक्ष को लेके चलते हैं वो, कृष्ण जैसे नहीं करेंगे, नेमिनाथ भगवान जैसे करेंगे, समय आ गया तो तीर्थंकरों को भी टेढ़े होकर के बैठ गए, तीर्थंकर के सामने भी पक्षपात आ गया, तीर्थंकर कहते हैं तुम करते रहो पक्षपात, तुम्हारे लिए भी हित के वचन ही हम कहते रहेंगे, इन्होंने दीक्षा ले ली और वो पक्षपात में विषयों के पक्ष में पड़ गए और वो मोक्ष मार्ग के पक्ष में जा चले गए। लोक में जो पक्ष विपक्ष चलते हैं ये संसार के लिए चलते हैं, इसमें स्वार्थ होता है, इसमें अन्याय भी हो सकता है, हो सकता है, वो ये नियम नहीं, हो सकता है, क्रोध मान माया लोग चार कषायें सभी जीवों के पास है, चाहे संसार कर रहा हो उनके पास है, चाहे मुनि महाराज बन गए हों उनके पास भी चार कषायें हैं, परंतु इन इन कषायों के वशीभूत होकर चलने वाले कौन, संसारी प्राणी। एक कोई नेता चुन के आ गया तो मैं सेवा करूं, मुझे मौका दो, वोट दो, पांव पड़ते पड़ते नेता आता है, मतलब इतनी आसक्ति सेवा करने की क्यों है? घर घर आ रहा है। एक तो उनको प्रतिष्ठा तो चाहिए, परंतु प्रतिष्ठा तो गौण है, उसमें स्वार्थ सिद्धि अधिक है। तो ऐसे नेता समाज का कल्याण नहीं कर सकेगा। जो धन का स्वार्थ रखता हो दूसरे का कल्याण नहीं कर सकेगा, दूसरे के अर्थ का शोषण कर लेगा। प्रतिष्ठा भी डेंजर है। प्रतिष्ठा के पीछे किसी भी पक्ष को ले लोगे, अन्याय अन्याय सोचोगे नहीं, न्याय अन्याय कुछ भी सोचे बिना अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए उस पक्ष में चले गए जो गलत था, तो ऐसा नहीं करते। न्यायवान राजा राम तो ऐसा नहीं कर सकेगा, राम दोनों को देखेगा, अन्याय के पक्ष में भी नहीं जाना और न्याय के पक्ष में रहकर हित भी करना और अपना स्वार्थ सिद्ध कुछ भी नहीं करना। राम के मन में ये कोई भावना नहीं थी कि मुझे ही राजा बनाओ, किसी को भी बनाओ लेकिन हमारा राज सुख में रहे, निष्पक्ष विचार थे राम के। उसमें प्रतिष्ठा की बात भी नहीं थी और अन्याय के पक्ष में जा रहा हो ऐसी भी नहीं थी बात, सद्भावना थी प्रजा के प्रति। भरत राजा बनता है तो क्या बिगड़ता है? वो भी हमारा भाई है, हम भाई भाई हैं, परिवार के हैं, मिलके रहेंगे, मिलके खाएंगे, प्रजा को सुखी रखेंगे, सिंहासन पर बैठने पर क्या बहुत बड़ा भगवान बन जाते हैं? नहीं, वो जो बैठता है उन्हीं को मालूम रहता है कि क्या परेशानियां आती है, उसी को मालूम रहता है। माँ बाप को मालूम है कि क्या स्थिति होती है घर की, बेटे को क्या मालूम? शादी के पश्चात ही पता चलता है सुख दुख क्या है संसार का। शादी से पहले बिल्कुल भगवान जैसे निर्मल वीतराग रहते हैं सभी, कोई निश्चिंत निर्विकल्प। शादी हो गई तो दूसरे दिन ही हो गया बर्बादी शुरू हो गई, जीवन की बर्बादी। विकल्पों में आ जाता है पूरा जीवन, वो भी एक के बाद इतने सारे विकल्प के उनको हल करते करते जिंदगी उसी में जाती है। बंधन है, जेल है, अब जेल में रख दिया जिंदगी भर सजा। शादी का मतलब जिंदगी भर सजा का जेल, पड़ो संसार में, विकल्प करते रहो और बंधन की अनुभूति करते रहो, मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है सोचते रहो, ऐसा क्यों हो रहा है तो तुमने ही तो स्वीकार कर लिया है बीड़ी को, बीड़ी स्वीकार कर लिया है तो उसका फल भी अपने को ही मिलेगा। वीतरागी भगवान किसी के बंधन में नहीं रहते। भगवान बनने के बाद दुनिया सब मिल करके निवेदन करे, भगवान हम लोगों के द्वारा कही हुई निवेदन है, अपील है आपसे कि थोड़ा सा ये बंधन हमारी तरफ से स्वीकार कर लो। और बंधन क्या है? कुछ नहीं, बस हमारी एरिया में आप विहार करो, इस बंधन को स्वीकार करो। कर लेंगे, हां भरेंगे। वो कहते हैं दशरथ की कथा सुनो, कैकेयी की कथा सुनो, वचन देने पर क्या हुआ था। भगवान को सब मालूम रहता है किसकी क्या स्थिति हो गई है, वचन देने पर, बंधन में पड़ने पर, बंधन स्वीकार करने पर किसकी कैसी स्थिति बन जाती है। उनके केवल ज्ञान में तो अनुभव में आ रहा है, उनको वो सारा दृश्य इतिहास का दिखता है। इन्हीं संसार के दुखों का चिंतन करके उन्होंने किसी भी बंधन को स्वीकार नहीं किया। वचन में बंध गए तो जो चलना भी पड़ेगा, वो हमें विकल्प पैदा करेगा, शांति से रहने नहीं देगा। वो हमने कहा है ना तो उसको करना पड़ेगा, हमने कहा है ना उसको करना पड़ेगा, वचन दे करके नहीं करना, ये स्वतंत्रता है। करना हित करना दूसरे का, दूसरे का हित करना कोई गलत नहीं, बहुत महानता का काम है, लेकिन वचन दे करके नहीं करना, ये सच्चे देव का लक्षण है, ये सच्चे गुरु का लक्षण है। और श्रावक, सच्चे श्रावक का क्या लक्षण, वो वचन देता कि नहीं। और वचन देने पर दुखी होता है क्या, नहीं। वचन नहीं देगा तो दुखी होगा वो, और वचन देगा तो दुख सुखी होगा। कैसे कैसे, तो ये संकल्प तो लेता ही है, सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानूंगा, आत्म कल्याण करूंगा, सच्चे आत्म कल्याण के पथ पर चलूंगा, ये बंधन तो स्वीकार किया। इस बंधन ने उनको सुख पहुंचाया क्या दुख पहुंचाया, सुख ही सुख पहुंचाया। जिस बंधन से सुख मिलता है वह बंधन श्रावक दशा में स्वीकार के योग्य है, किंतु जो बंधन आपके लिए संसार के विकल्प के कारण बन जाए, अशांति के कारण बन जाए, बार बार दुख का कारण, शल्य जैसे चुभता है बार बार, ऐसा हो जाए तो उसको स्वीकार नहीं करना। कैकेयी के काम को देख करके दशरथ ने एकदम से ही कह बैठे, वो क्या जरूरत थी। सावधानी से जरा सोचते, तुमको जो देना है मैं दे दूंगा, समय पर दे दूंगा, जो मांगना है मांग लो, समय पर मांग लेना, लेकिन आपस में ये और संकल्प कर लेते कि जो विकल्प का कारण नहीं बनेगा वैसा ही हम देंगे और वैसा ही आप मानेंगे। परिवार के लिए हाँ, एक शब्द ये भी डालना चाहिए उसमें, धड़ाम से दे बैठते हैं, सर्वस्व को दे बैठते हैं, वो गलत है। सोच समझ के चलना चाहिए, पूरा परिवार ही दुख में डूब जाए ऐसा वचन क्यों देना, जरा संभाल के। हाँ बिल्कुल, अपना अपने भविष्य को भी ख्याल में रखना चाहिए, दूसरे के भविष्य को भी ख्याल में रखना चाहिए, दोनों हमें विकल्प में पड़ने का अवसर ना आ जाए, ये सोच करके वचन व्यवहार करना चाहिए। पहले वचन व्यवहार धड़ाम से कर लेते हैं और उसको धर्म मान करके जिंदगी तक भोगते हैं, और दुख को भोगना भी धर्म बन जाता है उस समय। क्यों, हमने वचन दिया है अब पालन कर रहा हूं, पालन करना धर्म है, धर्म तो है ही, लेकिन ऐसा धर्म भी क्यों कर रहे हो, ऐसा धर्म भी क्यों करना, पहले फंसना और उसको धर्म कह करके निभाना और दुख से विकल्पों से आकुलता से जीवन व्यतीत करना ऐसा भी काम का नहीं। तो बात यह है कि वीतरागी देव, वीतरागी गुरु और वीतरागी धर्म, इनसे हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। पहली शिक्षा ये मिलती है कि जिंदगी को स्वतंत्र रखना चाहिए, वीतराग रखना चाहिए। वीतराग का मतलब क्या? वीतराग इज इक्वल टू स्वतंत्रता, निर्विकल्पता, सुख का स्थान। वीतराग यानी सुख का स्थान जिसमें दुख कुछ भी नहीं। इसलिए आयतन कहा, इनके पास आने से जीवन की स्वतंत्रता का महत्व पता चलता है, इसलिए आयतन है। आयतन इसलिए है और ये पता चलता है, इतना स्वतंत्र जीवन, इतना निर्दोष जीवन, इतना निर्विकल्प जीवन, इतना सुखमय जीवन, इसी जीवन से प्रभावित होकर के श्रावक भव्य जीव उनके पास आते हैं, उपदेश सुनते हैं और उस रास्ते पर चलने का प्रयत्न करते हैं, अपने जीवन को सुख की ओर ले जाने का कोशिश करते हैं। गुरु से क्या मिलता है? सुख का मार्ग मिलता है, स्वतंत्रता का, स्वतंत्रता की शिक्षा मिलती है, दुख मुक्ति का उपदेश मिलता है, इसलिए आयतन। और जिससे दुख में पड़ने का उपदेश मिलता हो वो अनायतन। कुगुरु, रागी गुरु, पक्षपाती गुरु क्या कहेगा? जैसे स्वयं है वैसा ही दूसरे को बनाएगा। परिग्रह बड़ा, सुख मिलेगा, ये लो मंत्र, सुख मिलेगा। परिग्रह बढ़ाने के लिए मंत्र दे दिया, परिग्रह के विकल्प में डाल दिया, अब आप उसकी साधना में लग गए तो परिग्रह मिला, मिलेगा नहीं मिलेगा ये सब आपके कर्म के ऊपर रहेगा, और आपको तो उन्होंने व्यर्थ के विकल्प में डाल दिया, मंत्र दे दिया और बाद में परिग्रह नहीं मिल पाया तो विकल्प मिल गया तो भी विकल्प में रहोगे, मिल गया तो इतना ही क्यों मिला कहोगे, इतना मांगा था इतना मिल गया, थोड़ा मिल गया या ज्यादा मिल गया तो बहुत अच्छा मिल गया, इसमें उसी में डूबोगे, उसको उसके भोग में डूबोगे, वो भी एक विकल्प। मिल गया तो विकल्प, नहीं मिला तो विकल्प, मिलने पर सुख नहीं, नहीं मिलने पर भी सुख नहीं। इसलिए परिग्रह की मांग को ही समाप्त करो, ये कहा। परिग्रह की मांग को समाप्त ही कर दो, मांगना ही नहीं। जो मिलता है पुण्य पाप के उदय से मिलता है, आता है जाता है, सहज जीवन जियो। देव से मत मांगो, गुरु से मत मांगो, धर्म से मत मांगो। धर्म से क्या मांगो? धर्म से यही मांगो कि जो परिग्रह है उसका सदुपयोग कैसा हो, ये पूछो, मार्गदर्शन पूछो। धन है, धन का उपयोग कैसा करूं, ये पूछो गुरु से, ये पूछो भगवान से। जो मिला है उसका उपयोग, सदुपयोग कैसे करूं? त्याग तो बाद की बात है, इसका भोग भी कैसे करूं, ये पूछो। संसारी प्राणी भोगना भी नहीं जानता, ये बुरी स्थिति है उसकी। ठीक से धन संपत्ति वैभव आदि को भोगना भी नहीं जानता, कैसी स्थिति है देखो। भोगों भोगों भोग, भोग के लिए इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करता जमा करता चला जाता है, जमा करता चला जाता है, भोगता नहीं, जमा ही करने में आनंद आ रहा है। और अंतिम समय तक नहीं, आज नहीं कल, आज नहीं कल, बाहर नहीं निकालना उसको आज नहीं कल, साड़ी तो लिया है नहीं, आज नहीं पहनना, कल गंदा हो जाएगा, कल गंदा हो जाएगा, कल गंदा हो जाएगा और साड़ी रखी रही और मृत्यु हो गई। देखो तो जिसको लिया उसको पहना भी नहीं, कोरे का कोरा, कोरा का कोरा रखा, क्यों नहीं, गंदा हो जाएगा। अरे फिर खरीदा क्यों उसको, धन कमाया, धर्म काय के लिए कमाया, भोग के लिए, तो जल्दी जल्दी भोगो तो सही, उपयोग तो करो, वो भी धाड़स नहीं। देखो भोग में भी धाड़स नहीं और योग में भी धाड़स नहीं, न इधर के न उधर के, ये बीच में ही लटकेंगे बिल्कुल। कुछ लोग तो इतना जमा करते हैं, इतना जमा करते हैं, वो साथ साथ पीढ़ी खा जाए, इतना जमा करते हैं और पीढ़ी के लिए कमा रहे हैं क्या, खुद के लिए कमा रहे हैं, समझ में नहीं आता किस लिए कमा रहे, साथ पीढ़ी की चिंता कर रहे हो कि खुद की चिंता कर रहे, किसके लिए कमा रहे, सात पीढ़ी आराम से बैठ के खा जाए इतना कमा लेते हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है, सात पीढ़ी का उद्देश्य है खुद का या दोनों का उद्देश्य है, यदि कहते हैं दोनों का है तो ये भी गलत है। तुमने जो दोनों के उद्देश्य से कमाया, जिसने कमाया उसके पुण्य के उदय से धन मिला, ठीक है ना, जिसने कमाया उसी के पुण्य के प्रभाव से इतना इकट्ठा हुआ है, अब इसका भोक्ता तो तुमको बनना पड़ेगा, दूसरा हो नहीं सकता उसका भोक्ता। ये कैसे महाराज, हम तो अपने पुत्र को दे करके चले जाते हैं, पीछे छोड़ करके जाते हैं, वो तो भोगते हैं उसका, ध्यान रखो उसका पुण्य नहीं है तो तुम्हारा धन उसके पास बचने वाला नहीं है। उसका यदि पुण्य है तो वो धन बच जाएगा, ना हो तो क्या करोगे, जिसके लिए कमाया वो व्यर्थ होगा क्या, नहीं वो व्यर्थ हो जाएगा। उसका पुण्य नहीं है और तुमने खूब कमा के रखा उनके उद्देश्य से और छोड़ के चले गए और उसने एक दिन में ही गमा दिया, क्यों, पुण्य का पुण्य नहीं था, अब पुण्य के अभाव में धन बचेगा नहीं, लक्ष्मी खड़ी रहती है, सरस्वती बैठी रहती है, वो तो जाने को ही खड़ी है, वो तो देख रही है तुम पुण्यात्मा है या पापात्मा, पापात्मा को देख लिया ना, खड़ी खड़ी बैठती तक नहीं, थोड़ा सा बैठो, एक कप चाय पी लो सरस्वती लक्ष्मी, नहीं चाय भी तुम्हारी नहीं चाहिए, सीधा ही चली जाती है वो, लक्ष्मी बैठती नहीं, पापात्मा के घर में लक्ष्मी बैठती नहीं, न खड़ी रहती है, वो तो चली जाती, घर के बाहर ही चली जाती। और ऐसे लोग क्या करते हैं, शाम को दरवाजा खुला रखते, लक्ष्मी आएगी, अब देखो तो ये भी मूर्ता है, मूर्ता है, लक्ष्मी कोई बाहर से आती, लक्ष्मी कहाँ है, यहाँ आत्मा में लक्ष्मी है, वो पुण्य लक्ष्मी है और पाप, पाप क्या है, लक्ष्मण है पाप, पाप है, पाप वो है लक्ष्मी को आने नहीं देता है, वो पाप ऐसे देवता है जिस देवता के रहने से लक्ष्मी अंदर नहीं आती, वो द्वारपाल है, गेट कीपर है, हे लक्ष्मी इधर नहीं आना वो डंडा लेकर के बैठा है द्वारपाल, पाप का द्वारपाल। तो लक्ष्मी चली जाती, अंदर नहीं आती। लेकिन लोक मूर्ता इतनी सी है इसमें कि लक्ष्मी और वो देवता, पाप का देवता, यहां अंदर में बैठे। लेकिन शाम को हम क्या चाहते हैं, शाम को दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए, खुला रखना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी आती है। बेटा दरवाजा बंद मत करना, माँ कहते हैं, बाप कहते, कहते कि नहीं कहते, तो ये किसका अतिचार है, किस गुण का अतिचार है? लोक मूर्ता किस गुण का अतिचार है, किस गुण का अतिचार है? सम्यक तो गुण का अतिचार है। दरवाजा बंद करना नहीं करना, ये जो विकल्प रखा है लक्ष्मी को लेकर के, धन को लेकर के, संपत्ति को लेकर के, ये लोक मूर्ता है। और लोक मूर्ता किसका दोष है? सम्यक दर्शन का दोष है। पाप पुण्य असल में वो सत्य सिद्धांत तो वो है, और आपने ऐसे मूड बना लिया, ऐसी धारणा बना ली कि लक्ष्मी शाम को आती है और दरवाजा खुला रहना चाहिए। तो शाम को पुण्य आता है और सुबह पुण्य चला जाता है, ऐसा कुछ है क्या? एक बार तुमने जो पुण्य कमाया है वो तो सतत आत्मा में रहेगा, सुख देता रहेगा, फल देने के बाद जाता है वो। क्या सुबह जाता है? सुबह फूल फल देता है और चला जाता, ऐसा है? वो तो 24 घंटा कभी भी पुण्य फल दे करके जा रहा है, पाप भी 24 घंटे में कभी भी आ सकता है, फल दे करके जा सकता है। सत्य तो ये है। ये सत्य मालूम न होने वाले क्या कहते हैं, घर पर दरवाजे पर दोष देते हैं। आज हमारे लिए अनिष्ट इसलिए हुआ, शाम को हमने कल के दिन दरवाजा बंद रखा था, लक्ष्मी अंदर नहीं आई, वो बाहर से बाहर ही गई। भगवान तो कहते हैं तुम दरवाजा बंद करके नहीं, तुम गुफा में भी बैठे रहो, बहुत गहराई में डूबे रहो, समुद्र में, गुफाओं में डूबे रहो, तो भी तुम्हारे लिए अगर सुख मिलना है, पुण्य अगर पास में है, तो भगवान भी छप्पर देख फाड़ करके फल देता है। ये कहते हैं ना, हाँ, पुण्य अगर पुण्यवान भाग्यवान हो तो भगवान भी छप्पर देकर फाड़कर, छप्पर फाड़कर सुख देता। तो भगवान नहीं देता, वो भी वहां पर भी लोक मूर्ता है, वहां पर कौन दे रहा है? पुण्य दे रहा है। तो कहीं भी छुप के बैठे हुए तो पुण्य क्या साथ नहीं आता? आता। चक्रवर्ती जाकर के छप्पर में बैठ गया, मान लो क्या दुखी हो जाएगा? पुण्य उनके पास छप्पर में भी आ जाएगा। भाग्यवान चाहिए, पुण्यवान चाहिए। पुण्यवान के पीछे ये भौतिक संपत्ति वैभव साथ ही चलती, कुछ छाया है। पुण्यवान व्यक्ति व्यक्ति है तो उसकी छाया है भौतिक संपत्ति। आदमी जैसे ही छाया में चलता है, इसमें रास्ते पर चलता है, तो छाया साथ चलती है। आदेश देना पड़ता है क्या? ये छाया देख, अभी मैं एक घंटे के बाद जाने वाला हूँ, चलना पड़ेगा साथ में, कहना पड़ता है? तो भौतिक संपत्ति मांगनी नहीं पड़ती किसी से। अगर तुम पुण्यवान हैं और पुण्य कमा के रखा है तो भौतिक संपत्ति साथ ही चलती है। नहीं भी चलती है, पुण्य तो चलेगा, और जहां जाओगे, जहां जितना पुरुषार्थ करोगे उतना आपको मिलेगा ही। जैसे बैंक का वो मिलता है चेक, हाँ, चेक दिखा दो बैंक में, कहीं भी जाओ चेक दिखा दो, चेक चाहिए, बैलेंस भी चाहिए। नहीं, बैलेंस के बिना चेक कहाँ से आ जाएगा? बैलेंस हो तो ही चेक आएगा ना। हाँ, चेक यानी हमारा भाग्य, हमारा पुण्य है वो। हाँ, बैलेंस में चाहिए तो बैलेंस में तो धन है, इसलिए उसका चेक बना है। चेक बाद में बना है, पहला धन है। भाग्य हमारा पहले से ही है तो हाथ पसारते ही आपके हाथ में वस्तु आ जाती है। ये पुरुषार्थ है। हाथ डालते ही हाथ में एक कथा आती है। एक व्यक्ति ने भौतिक संपत्ति पर बहुत मोह किया, मोह बहुत था उनको, लेकिन मोह के साथ साथ वो भाग्यशाली भी था। मोह इतना था कि मोह के कारण से वो सब कुछ सोने के रूप में ही देखना चाहता था। जिसको मैं छूं वो सोना बन जाए, ऐसा चमत्कार हो जाए मेरे जीवन में, और ऐसा चमत्कार होने के लिए भी तो पुण्य चाहिए। लेकिन पुण्य था और हो भी गया। वो एक देवता के पास गया, हाथ जोड़ करके कहा, हे देवता, मैं बहुत दुखी हूं, विकल्प में हूं, मेरा विकल्प दूर करे। देवता ने पूछा, कौन सा विकल्प, कौन सा दुख है तुमको? वैसे तो कुछ नहीं है, खाने पीने के लिए सब कुछ अच्छा है, परिवार भी अच्छा है, सब सुख में है, लेकिन मेरे मन में इतना विकल्प बार बार आता है कि मैं अधिक से अधिक सोना अपने आंखों से देख सकूं, सोना ही सोना, सोने से भर जाए मेरा घर, सोना ही देख सकूं, ऐसी एक आशा है। उस आशा के कारण से मैं दुखी हूं, लेकिन फिर भी भाग्यशाली हूं। क्यों? वो भी अपने जीवन में मैं सपना साकार कर सकता हूं। अगर तुम्हारा सहयोग मिल जाए तो हो जाएगा। तो देवता ने सहयोग कर दिया, सहयोग किया, किया ना किया, नहीं क्यों कह रहे हैं? देवता ने सहयोग किया। देवता तो जादूगर होते हैं, मालूम ही है ना आपको। उनकी जादूगारी से इनको सहयोग मिला। ये चमत्कार प्रकट हो गया कि जो छूता था वो सब सोना बन जाता था। अब इतना सहयोग देवता का जो मिला, पुण्य तो था। पुण्य ना होता तो क्या देवता सहायता पहुंचाता? नहीं, पुण्यवान व्यक्ति को ही कोई सहायता पहुंचाने आता है। देवता ने कहा, तुम पुण्यवान हो, भाग्यशाली हो, ये कोई असंभव बात नहीं। अब तुम्हारा पुण्य है ही, तो मैं कौन हूं? मेरे बिना भी ये काम हो सकता है। तुम्हारी इतनी तीव्र जिज्ञासा है, तीव्र पुण्य है, तो जो छो तुम्हारा सोना बन जाएगा। लेकिन उसके लिए जरा समय है, अभी पुण्य का उदय नहीं आया। पुण्य का उदय आने पर ये भी हो जाएगा। तो देवता कब से होना शुरू हो जाएगा? ये तो चार दिन बाद हो जाएगा, देख लेना। तो चार दिन बाद हुआ भी, जिसको छुआ सब सोना बन गया, सब सोना। अब उसने खाते समय थाली को छुआ, सोना हो गया। पानी छुआ, पानी सोना हो गया। दूध छुआ, दूध भी सोना। माइक छुआ, माइक भी सोना। पुस्तक छुआ, पुस्तक भी सोने का। पेन छुआ, पेन भी सोने का। सब सोना होता गया। घर के खंभे को छू लिया, पूरा खंभा सोने का, सब सोने का होता चला जा रहा है। अब ये सोना ही सोना, सोना ही सोना, खुश तो हो रहा है वो, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं भूख से मर जाऊंगा।
है।
उन्होंने ये सोचा कि अभी थाली को छुआ, खाना को छुआ, तो अभी ये सोना बनता जा रहा है, खाने देगा क्या नहीं देगा ये ख्याल नहीं उनको, बेहोश में ऐसा होता गया। अब वो भूख प्यास सब भूल गए, लास्ट में आकर के सब सोना ही सोना बनता जा रहा है, वो चिंता में ऐसे बैठ गए, सब सोना बनने लग गया। अद्भुत तो हो, एक ओर तो आनंद में डूब रहे, एक ओर चिंता में पड़ गए हो, ये ऐसा सब कुछ सोना बनता ही जाएगा तो क्या क्या हो जाएगा। कुर्सी पर बैठा ऐसा, और उसकी एक छोटी बच्ची आई, उसने देखा पिताजी को, पिताजी ऐसे क्यों बैठे हैं आप, ऐसे चिंता में क्यों बैठे, क्या सोच रहे। तो कुछ नहीं बेटी, तो वो आकर के पिताजी को छू लेती है, तो बेटी भी सोने की हो गई, मूर्तिवत खड़ी हो गई, वो सोने का सबका सोने, जो पत्नी आ गई, पत्नी ने उठा लिया तो वो भी सोने की हो गई, सभी लोग भी सोने के होने लग गए। अब उन्होंने कहा कि अरे ये तो सब चेतन आत्माएं अचेतन होने लगे, अब क्या करें। देवता से हम निवेदन करते पुनः, हे देवता तुमने जो वरदान दिया है वो उसको वापस ले लो। एक दंत कथा है, सच्ची कथा नहीं है, ये दंत कथा, वापस ले लो। वापस देने के लिए उनको तपस्या करनी पड़ी, देवता को बुलाने के लिए तपस्या करनी पड़ी। देवता को बुला करके उसने पुनः निवेदन किया कि ये जो तुमने वरदान दिया है वो ऐसा जादू हमको नहीं चाहिए, आपका सहयोग इतना भी नहीं चाहिए, आप वापस ले लेना। अब उनको समझ में आ गया, वस्तुतः जीवन में सुख क्या है, सोने में सुख है या सोने में सुख है निश्चिंत, दोनों समझ में आ गई। निश्चिंत सोने में सुख है क्या, सोने को प्राप्त करने में सुख है, ये समझ में आ गया। उन्होंने कहा सोना प्राप्त करने में कोई भी सुख नहीं है, इस सोने के कारण से हम सो नहीं पाएंगे। उसने वापस कर दिया, और देवता इतनी कृपा करो कि जो हमारा परिवार जो ऐसा मूर्तिवत खड़ा है उसको चेतन बनाओ। तथास्तु कहा, चले गए, वो सभी जिंदे हो गए। अब वो सोने से घबराने लगे, क्यों, नींद भी नहीं आ रही थी ना, सोने से नहीं घबराते थे, सोने से घबराने लगे। इस तरह से होता है। मैं क्या बता रहा था, लोक मूर्ता में हम क्या सोचते हैं, लोक मूर्ता में हम ये सोचते हैं कि दूसरा मुझे सुख देगा, दूसरा मुझे दुख देगा, दोनों सोचते हैं। लेकिन दूसरा कोई भी सुख और दुख नहीं देता, ये सिद्धांत सत्य है, यही सिद्धांत सत्य, इस पर हमें अटल विश्वास करना, ये सम्यक दर्शन का लक्षण है। सम्यक दृष्टि इस पर विश्वास करता है, कर्म सिद्धांत पर। यहां जहां तक छह अनायतन की बात चल रही है, छह अनायतन के विरुद्ध छह आयतन बनते हैं। तो आयतन कौन कौन से ही गिनेंगे, कौन कौन से आयतन बनेंगे, वीतराग देव स्वरूप आयतन और वीतराग गुरु स्वरूप आयतन, वीतराग धर्म स्वरूप आयतन, वीतराग देव मान्यता युक्त पुरुष स्वरूप आयतन, वीतराग गुरु मान्यता युक्त पुरुष स्वरूप आयतन, वीतराग धर्म मान्यता युक्त पुरुष स्वरूप आयतन, ये छह आयतन बनेंगे। अब इसमें प्रथम के तीन देव गुरु और धर्म, या तो उसको शास्त्र भी कह सकते, देव गुरु और धर्म, ये तीनों पूजनीय आयतन माने जाते हैं, वंदनीय पूजनीय। वंदनीय पूजनीय माने जाते हैं आदि के तीन आयतन, और लास्ट के तीन आयतन इनको मानने वाले हैं वो पूजनीय है क्या नहीं, ये पूछ रहा हूं। हाँ, मेरा प्रश्न ये है, वीतरागता देव मान्यता युक्त पुरुष स्वरूप आयतन ये पूजनीय है क्या नहीं, विचार करके बताओ। पूजनीय नहीं है ना, क्यों नहीं है? असंयमी। फिर आयतन कैसे किस कारण से बन गए? हाँ, उनके रास्ते पर चल रहे हैं, आत्मकल्याण कर रहे हैं, इसलिए आयतन कहा। अब ये इनकी संगति हमें करना चाहिए, क्योंकि वो वीतराग मार्ग पर ही चलने वाले हैं, इसलिए इनकी भी संगति हमें करना चाहिए। संगति किस लिए? संगति में रहने से गुण बढ़ते हैं, तो गुणवान होने के कारण, गुणवान की संगति करने से गुणों का आदान प्रदान होता है, इसलिए इनकी संगति करनी चाहिए। लेकिन पूजा करनी चाहिए क्या? और ऊपर के तीन की संगति भी करना चाहिए और पूजा भी करना चाहिए। वो पूज्य क्यों है? वो अपरिग्रही हैं, तीनों परिग्रह मुक्त हैं, और नीचे के तीन परिग्रह से सहित हैं। वो मुक्त हैं इसलिए संयमी हैं, और नीचे के परिग्रह सहित होने से असंयमी हैं। असंजदम न वंदे। तो आयतन में भी यदि असंयम होता है तो पूजनीय नहीं है। संगति करने के लायक तो है लेकिन पूजनीय नहीं है। हमने कहा था असंयम भी एक अनायतन है कि नहीं? परंतु उस असंयम के साथ साथ सम्यक दृष्टि हो तो सम्यक तो आपके लिए आयतन है, पर असंयम आपके लिए अनायतन ही है। सम्यक तो भी हो और अनायतन भी न हो, असंयम का अनायतन भी न हो, तब पूजता आती है। ये विशेष रूप से विषय खोल के बता रहे हैं आज। कुछ लोग ये समझते हैं आयतन तो छह हैं, आयतन यानी पूजनी, तो उनको विवेक नहीं है। क्या सोचते हैं? आयतन छह हैं, सभी आयतन पूजनी, तो आयतन मात्र पूजनी कहेंगे तो असंयम की पूजा भी करने का प्रसंग आएगा। तो इसमें सम्यक दर्शन तो हो और असंयम भी हो, ऐसे जीव कौन कौन निकलते हैं देख लो संसार में, सम्यक दृष्टि हो और असंयमी हो, कौन कौन है? चार गति में मनुष्य भी है, तिरेंच भी है, देव भी है। देखो सम्यक दृष्टि तिरेंच क्या आयतन नहीं है? आयतन नहीं कहना पड़ेगा, आयतन सम्यक दर्शन तो उसका आयतन है, और उसके पास अनायतन क्या है? असंयम अनायतन है। उसके पास भी हमारे जैसा तो है, वो नारकी जीव में सम्यक दर्शन आयतन है और असंयम अनायतन है। चारों गति में घटित होगा। अब देव हैं चार चतुर्निकायिक देव, भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषवासी, वैमानिक। ये इनके पास सम्यक दर्शन आयतन है और असयम अनायतन है। देव असयमी होते हैं कि नहीं, वो आयतन कहलाता है कि अनायतन? अनायतन। सम्यक दर्शन आयतन कहलाता है कि अनायतन? आयतन। आयतन के साथ साथ अनायतन भी हो तो क्या पूजा हो सकती है? दूध के साथ साथ उसमें छांछ भी पड़ गया हो तो क्या दूध कहला सकता है? नहीं। यहां प्योर दूध चाहिए। खटाई डला हुआ दूध प्योर दूध नहीं कहलाता। कौन खरीदता है? दुकानदार दूध बेचने के लिए बैठा है और अभी अभी थोड़ा सा खटाई डाल दिया है, दूध के मूल्य में उसको खरीदोगी क्या? अभी भी थोड़ा सा खटाई, एक बूंद छांछ डाल दिया तो दूध है क्या? नहीं है। लेकिन उसकी कीमत है क्या? नहीं। कीमत तो है। हाँ, कीमत क्यों है? यदि खटाई पड़ भी गया है उससे घी निकाल लेंगे हम और छांछ बनाकर छांछ खा लेंगे। कीमत तो है लेकिन दूध नहीं है। वो दूध के मूल्य में उसको बेचना संभव नहीं। जिस क्षण में आपने खटाई डाल दी उसका मूल्य बदल गया, अब नहीं बिकेगा वो। छांछ की क्या कीमत? एक लीटर छाछ की क्या कीमत? दो रुपए लीटर ग्लास। और दूध की क्या कीमत? एक एक ग्लास का, एक लीटर का। एक लीटर छाछ का क्या कीमत? छाछ की क्या कीमत? 10 रुपए। दूध की क्या कीमत? 20 रुपए। डबल तो है ना। मैं मूल्य इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बाजार के मूल्य आप लोगों को पता रहते हैं। डबल कीमत किसका है? दूध का। देखो उसमें एक बूंद न पड़ने से तो कीमत है, डबल कीमत। अगर एक बूंद आपने डाल दिया तो कीमत घट गई। तो एक जो बूंद है वही तो असयम है, वो असयम है। बाकी तो संयम है, वो सम्यक दर्शन है। तो अकेला सम्यक दर्शन पूजनीय नहीं है। उस सम्यक दर्शन के साथ संयम आने पर ही पूज्यता आती है। समझ में आ गया? कितनी बड़ी बात बता दी। जैन धर्म में 5 ही परमिष्टि क्यों पूजे जाते? वहां संयम भी है और सम्यक दर्शन भी है। संयम भी है, सम्यक दर्शन भी। और श्रावक मुनिवत पंच परमेष्टिवत क्यों नहीं पूजा जाता? वहां सम्यक दर्शन तो है लेकिन असयम है, इसलिए पूजा नहीं जाता। तो श्रावक कैसा दूध है? बूंद पड़ गया है जिसमें, ऐसा दूध है। मुनि कैसे दूध हैं? प्योर दूध है। हमारी कीमत 20 रुपए की है, आपकी कीमत बस इतना ही फर्क। और उसमें से मक्खन निकालकर घी को भी अलग कर दिया है, ऐसा छाछ उसकी क्या मूल्य है? हैं? फ्री में भी पिला लेते हैं। सम्यक दर्शन भी ना हो और संयम भी ना हो, दोनों ही ना हो तो कोई कीमत नहीं उसकी। कुछ लोग कहते हैं देवों में फर्क करते हैं। ये जैन देवता मंदिर में है, देवगति का देवता है वो जैन देवता, और बाजार में जो रहते हैं वो अजैन देवता, उसको वो करना मिथ्यात्व है और ये करना सम्यक्त्व है, क्योंकि ये सम्यक दृष्टि है। अब बोलो, सम्यक दृष्टि तो है, वो क्यों पूज्य नहीं है? असंयम के कारण। आप फर्क समझो, बाजार का देवता सम्यक दृष्टि हो सकता है क्या? नहीं। क्या तुम्हारे मंदिर पर बैठने से सम्यक दृष्टि होता है? बिल्कुल। देवता स्वर्ग में कहीं भी रहते हैं, सम्यक दर्शन किसी भी कोने में रहे हो सकता है कि नहीं? उनको हो सकता है। क्या मंदिर में आना पड़ेगा? जैन मंदिर कोई ठेका नहीं है सम्यक दर्शन प्राप्त करने का। नरक में रहने वाला नारकी जीव भी सम्यक दृष्टि बन रहा है। कैसा स्थान पर? बिल्कुल गंदगी, बिल्कुल बदबू, जिस धरती को स्पर्श मात्र से अनंत दुख होता है, ऐसे जमीन पर रहने वाले भी सम्यक दृष्टि बन रहे कि नहीं? तो फिर कैसे कहें हम बाजार में रहने वाले देवता तो देवता को पूजना वो मिथ्या तो है, और मंदिर में रहने वाले देवता को पूजना सम्यक तो है, ये कैसे कहें? बोलो। नहीं, ये देवता परिग्रहधारी मंदिर में परिग्रहधारी देवता को, जैन मंदिर के परिग्रहधारी देवता को पूजना तो सम्यक तो है कहना, धर्म है कहना, गलत है क्या? नहीं। तो पूजनी कौन? जिनके पास सम्यक दर्शन और संयम अपरिग्रह दशा है वही तो पूजनी है। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि फिर रखा क्यों है? तो पागल कहाँ का, इतना भी नहीं विचार करता, रखा क्यों नहीं? तुम्हारे लिए क्या? भक्षण करने के लिए रखा है, पांव पड़ने के लिए रखा है, कि पूजा करने के लिए रखा है? रखा इसलिए है कि देवता भी अरहंत के भक्त हैं, भक्ति करने आए हैं, इसको बतलाने के लिए रखा है। देवता भी तो भक्ति करते हैं, अरहंत की तो भक्ति करेंगे, वो भी तो खुद असंयम ही है, उस असंयम को त्याग कर संयम ही धारण करना चाहते हैं मनुष्य पर्याय में आकर के। सारे देव अरहंत के चरणों में आ गए उनकी पूजा के लिए। पूजा के लिए आ गए क्या? तुम्हारे लिए, तुमसे पूजा करवाने के लिए आ गए? करवाने के लिए आए क्या? पूजा करने के लिए आए, उनको भी तो कल्याण करना है। आप जैसे वो भी संसारी हैं, धन संपत्ति वैभव परिग्रह चिंताएं विकल्प सब उनके पीछे भी हैं। आप में और उनमें कोई डिफरेंस नहीं संसार की अपेक्षा से, दोनों संसारी हैं। संसारी जीव संसारी जीव की पूजा करे, ये बुद्धिमानी है कि अज्ञानता है? महाअज्ञानता है, विवेकहीनता है। अब दो महाराज हैं, दो तरह से उपदेश दे रहे हैं। ये कहते हैं कि ए, वो तो जैन मंदिर के सम्यक दृष्टि देवता, तुमको तो पूजना चाहिए, तुम संसारी, तुमको तो पूजना पड़ता है। ऐसे भ्रमित करने वाले भी साधु हैं क्या? नहीं। अब सामान्य श्रावक भ्रम में पड़ जाता है तो जमलिंग में आता है, जमलिंग में आता है, और उसको यदि ज्ञान है तो भ्रम उत्पन्न होने का सवाल ही नहीं उठता। ये सम्यक ज्ञान संस्कार किस लिए? इसी भ्रम को दूर करने के लिए। ये सम्यक ज्ञान संस्कार शिविर किस लिए? भ्रम को दूर करने के लिए। आपका भ्रम दूर हो गया तो ही कल्याण है। आप भ्रम में पड़े हैं तो कल्याण तो कभी होगा ही नहीं, तुम कुछ भी करते रहो। जो करते आए हैं उसको करते हुए रहने पर भी कल्याण नहीं, और उसको छोड़ोगे तो भी कल्याण नहीं, क्योंकि भ्रम तो गया नहीं है और छोड़ा है तो भी कल्याण नहीं है। ज्ञान तो चाहिए, और ज्ञान गुरु के संगति के बिना आता नहीं है, गुरु से सुनना ही पड़ेगा। आज पंचम काल में अरहंत की वाणी को गुरु ही बता सकता है, वो भी कैसा गुरु? सच्चा गुरु, विवेकी गुरु। ज्ञानी गुरु तो बहुत मिलेंगे, विवेकी गुरु नहीं मिलेंगे। शास्त्र के ज्ञाता गुरु तो बहुत मिलेंगे, आपको ऐसा लगता है कि वो क्या शास्त्र का ज्ञानी नहीं है क्या, वो क्या उसको पढ़ा नहीं है क्या, वो क्यों नहीं बताते, आप ही क्यों बताते, ऐसे क्रॉस करते हैं अज्ञानी श्रावक, क्रॉस करते हैं, प्रश्न करते हैं। वो क्या शास्त्र नहीं पढ़े क्या, वो क्यों नहीं बताते, शांति सागर जी शास्त्र नहीं पढ़े थे क्या, वो क्यों नहीं बताते थे, यही बता रहे हैं, मिथ्या तो छोड़ो, मिथ्या तो छोड़ो। कहते कि नहीं कहते अज्ञानी लोग कहते हैं, और इन बातों को सुन करके मुझे कितनी पीड़ा होती होगी। क्या बोल रहे हैं यही समझते नहीं है, विवेक नहीं बोलने में भी, विवेक से सोचते नहीं तत्व क्या है, तत्व क्या है, संयम असंयम का सवाल है, सम्यक दर्शन और संयम दो का सवाल है। अब इसमें सत्य क्या है, असंयमी पूजनी क्या संयमी पूजनी, सत्य क्या है, संयमी पूजनी। तो देवताओं के पास असंयम होता है क्या, नहीं होता है, परिग्रह के कारण से असंयम होता है। श्रावक के पास असंयम होता है कि नहीं होता है, होता है, किसके कारण, परिग्रह के कारण। नारकियों के पास संयम होता है कि नहीं होता, नहीं होता, असंयम होता है, किस कारण, वो भी परिग्रही है। तिर्यंच असंयमी है कि नहीं है, किस कारण, परिग्रह के कारण। सब जीव परिग्रहधारी हैं, परिग्रह दोष है, परिग्रह अनायतन है। अनायतन पूज्य है क्या अपूज्य है, क्या बता रहा है शास्त्र, अपूज्य है, परिग्रह अनायतन है, परिग्रहधारी जीव अनायतन है। फिर सम्यक दर्शन होने के कारण से आयतन है। देखो आपके पास सम्यक दर्शन है इसलिए आयतन है, किंतु असंयम होने के कारण अनायतन है, अनायतन एक अनायतन और बचा है इसलिए पूजनीय नहीं है। अब ये भाव भेदभाव कहां से आया, मंदिर का देवता अलग और बाजार का देवता अलग, इसको छुड़ाने से पहले महाराज उसको छुड़ाओ, बोलो ये जैन धर्म है क्या, उधर का छुड़ा दिया और इधर का लगा दिया, जैन धर्म है क्या, ऐसे उसको छुड़ाने से और किसको कराने से सम्यक दृष्टि हो जाएगा क्या श्रावक, नहीं होगा। परिग्रही पूजनी नहीं है, बस जैन धर्म का एक ही मार्ग, एक ही तत्व, एक ही सिद्धांत, असंजदम न वंदे। एक ही वाक्य ध्यान में रखो, जहां जहां असंयमी अवस्था है वो जीव चाहे इंद्र देवता भी क्यों न हो वो भी पूजनी नहीं, ये तो इंद्र देवता के नौकर हैं, आदेश में रहते हैं, देवता भी नौकर हैं, आदेश में चलते हैं, वो देवता के मालिक कहलाते हैं, देवराज कहते हैं उनको, देवों को राजा, देवों का राजा इंद्र। गर्भ कल्याणक में सारी श्री ही दीर्ति कीर्ति जो रहती हैं देवियां, जिनको आदेश मिलता है इंद्र का, सौधर्म इंद्र का, जाओ माता की सेवा में लग जाओ। और जो सेवा कर रहा है वो पूज्य कैसे हो सकता, माता की सेवा कर रहा है। तीर्थंकरों की माता की सेवा करने वाला देव पूजनीय हो सकता। इंद्र की बातों में रहने वाला, इंद्र असयमी, असयमी के आदेश से चलने वाला देव पूजनीय हो सकता। इंद्र भी पूजनीय नहीं, जो पूजनीय नहीं है उनके आदेश में, असयमी के आदेश में असयमी चल रहा है। दो असयमी है, एक इंद्र भी असयमी और ये भी असयमी। कौन महान है इसमें, बड़े कौन है? इंद्र बड़ा है, तो बड़े की पूजा करो ना। लेकिन इसकी भी नहीं करना है, ये कहा क्यों? असयम असंजदम ना वंदे, इंद्र भी असयमी है और एक देवता भी असयमी, दोनों असयमी और आप भी असयमी। असयमियों का बोलबाला है सब जगह। कौन किसकी पूजा करे? अब उसमें जो विवेकी असयमी है, विवेकी संयमी श्रावक जो असयमी है, वो विवेक के कारण से संयमी की ही पूजा करता है, असयमी की पूजा नहीं करता। ये है महाराज, फिर इस प्रश्न का उत्तर तो दो, फिर रखा क्यों है? अरे पागल, कहाँ का रखा क्या है, रखा क्यों है यही सोच रहा है अभी, थोड़ा भी चिंतन नहीं करता, कितना पागलपन है अभी भी। कहीं भी रखने दो, सिर पर भी रखने दो, क्या मतलब रखा क्यों है, इस प्रश्न का क्या उत्तर है? रखा क्यों है, किस उद्देश्य रखा? हाँ, वो भी भगवान की भक्ति करते हैं, भक्त हैं, इसलिए रखा है। वो अपने आत्म कल्याण की भक्ति करके आत्म कल्याण करने वो आए हैं। वो और आप एक हैं, एक भी नहीं, ऐसा भी मत कहो। और हम बारीक जाएंगे, आपने तो अनुरोध धारण किया, फार्म भरा है, किसी देवता के पास ये फार्म दे दो, महाराज का दिया हुआ फार्म भर के दे दो। उन्हें कहता म्यूजिक, मेरे लिए तो ये संभव नहीं है, अष्टमी चतुर्दशी को ब्रह्मचर्य से रहना देवता, मेरे को संभव नहीं है, फार्म नहीं भर सकता। अब श्रेष्ठ कौन है, फिर समान मत कहो। समान मत कहो, तुम अष्टमी चतुर्दशी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी कर रहे हैं तो तुम संयमी, एक देश संयमी, एक देश संयमी। पूर्ण ब्रह्मचर्य धारण कर लेते हैं तो पूर्ण ब्रह्मचर्य, सही पूर्ण संयम आ गया। देवता के जीवन में कभी ब्रह्मचर्य व्रत आ नहीं सकता। और आपने वस्त्र को प्रमाण कर लिया, शिवसा के कारणीभूत वस्त्र त्याग दिया, आप तो अनुवृत्ति बन गए। देवता से कहो तुम्हारे पास जो आभूषण हैं, वस्त्र हैं, प्रमाण कर लेना, फॉर्म भर लेना और महाराज को दे देना। भर देगा फॉर्म, कुछ वस्त्रों को कम कर देगा? नहीं, वस्त्रों को कम कर देगा क्या? नहीं कर सकता। तो श्रेष्ठ कौन, श्रेष्ठ कौन है? अब अज्ञान, अज्ञान अवस्था में हम क्या सोचते थे, देवता श्रेष्ठ और हम उनसे नीचे। अज्ञानता थी क्या? नहीं। और इस अज्ञान की पुष्टि कुछ साधु कर रहे हैं क्या? नहीं। फिर क्यों शंका आती है आपको, इस इतना सत्य जानने के बाद भी ये महाराज ठीक या वो महाराज ठीक? अरे तुम शास्त्र को देखो, तत्व का विचार करो, तत्व का विचार करके निर्णय करो, क्यों भटकते हो, क्यों उतावली करते हो, दिमाग नहीं है क्या? और दिमाग नहीं है तो फिर यहां मोक्ष मार्ग में चलना ही संभव नहीं। दिमागी व्यक्ति, विचारक व्यक्ति, परीक्षा करने वाला व्यक्ति, डीप सोचने वाला व्यक्ति ही यहां मोक्ष मार्ग में चल सकता है। और उतना विचार करके, विचार किए हुए सत्य पर विश्वास करने पर ही सम्यक दर्शन हो सकता है, उसके बिना भी सम्यक दर्शन है ही नहीं। कहीं कुछ घबराना नहीं, कल्याण करना है क्या डरते हुए बैठना है? तुमको जैन कहा गया है, डरपोक हो क्या? जैन इज इक्वल टू निर्भय। स्वतंत्र, स्वतंत्र ही रहेगा, स्वतंत्र ही था, निर्भय। सम्यक दृष्टि बनने के बाद वो स्वतंत्रता मिलती है। पहली स्वतंत्रता सम्यक दर्शन से, दूसरी स्वतंत्रता असंयम के त्याग से, तीसरी स्वतंत्रता केवल ज्ञान प्राप्त होने से, चौथी स्वतंत्रता संसार से मुक्त होने पर पूर्ण स्वतंत्रता। भारत पूरी तरह से स्वतंत्र। स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं, ये स्वतंत्रता संयम से प्राप्त होता है, होती है। ये स्वतंत्रता संयम से प्राप्त होती है या स्वच्छंदता से? हाँ, ज्ञानी को स्वतंत्रता मिलती है, अज्ञानी को स्वतंत्रता नहीं मिल पाती। अज्ञानी को स्वतंत्र होने का मार्ग ही मालूम नहीं रहता, कैसे स्वतंत्र होगा वो? और ज्यादा कुछ उतावली करने लग जाए तो स्वच्छंद हो जाता है, हाय हाय करने लग जाए। तो सवाल ये, मंदिर का देवता हो या बाहर का देवता, वो समान ही है। हाँ, ये देव और वो देव, देव गति के है क्या नहीं? हाँ, अब दोनों ही पहले गुण स्थान में है तो कोई फर्क है मंदिर में रहने से और बाहर रहने से? दोनों ही मिथ्यात्वी हैं तो क्या फर्क है? कुछ फर्क है क्या? दोनों एक हैं। अच्छा, एक सम्यक दृष्टि बन गया और एक मिथ्या दृष्टि है, तब क्या फर्क पड़ा? असंयम तो है दोनों में, वंदनीयता आती है क्या? नहीं आती। दोनों ही सम्यक दृष्टि हैं तो क्या फर्क पड़ा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। वंदनीयता आ गई क्या? नहीं आई। वो देवगति का देवता बाहर आके बैठ गया तो वो मिथ्या दृष्टि, अंदर आ गया तो सम्यक दृष्टि। ऐसा इतने मात्र से सम्यक दर्शन का आना जाना ऐसा होता है क्या? नहीं। सम्यक दृष्टि कहीं भी हो और देव हो, वो वंदनीय है नहीं। किस कारण से? असंयम के कारण से। जैन धर्म एक ही बात में निपटा देता है इस न्याय को, असंजदम न वंदे। यदि उनको असंयम होने पर भी पूजनी कहते हो तो खुद भी तुम असंयमी हो, परस्पर में सम्यक दृष्टि भी है, असंयमी भी है, पूजा करवा लो ना। बल्कि उनके अपेक्षा से एक कदम अधिक है, फार्म भरा है, फार्म भरने के बाद भी असंयम है, लेकिन देवता से एक कदम आगे हैं आप, देवता से एक कदम आगे हैं। तो देवता की पूजा की अपेक्षा आपकी पूजा करना श्रेष्ठ ठहरेगा क्या? नहीं। उड़ी भरो, लेकिन एक शीलवती नारी का उड़ी भरो, तुम्हारे लिए पुण्य होगा, पर देवता की उड़ी भरने से कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो असंयम तो है ही, लेकिन क्योंकि वो उसका उपयोग नहीं कर सकते, जिस वस्तु को तुमने दे दिया उपयोग में नहीं आ सकते उनको, ये कौन से आहारी है वो? देवों का आहार कौन सा? मांसाहार। ये शाकाहार है क्या उनका आहार? और तुम क्या भर रहे हैं शाकाहार? क्या क्या कौन सा आहार भर रहे हैं? केला कौन सा आहार? नारियल कौन सा आहार? सुपारी कौन सा आहार? ये देवों को खाने पीने में चलते आते हैं क्या काम में? तो उनका क्यों भरना? जो खाता नहीं उनको क्यों भरना? हा? अच्छा, तुम्हारा वस्त्र चलेगा क्या? मनुष्य की दी हुई वस्त्रों को वो उपयोग में नहीं ला सकते, उनके दिव्य वस्त्र होते हैं। उनके वस्त्र आपको चल सकते हैं, लेकिन आपके वस्त्र उनको नहीं चल सकते। ये विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कुछ भी विचार नहीं करते, मूड हो करके बस धूम धड़ा का एक के पीछे एक के पीछे एक। और कोई पूछता है तो बस आपके पास इतना ही उत्तर, इससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं। पहला पासून, ये कोई होता है जैन धर्म ऐसा? इतना कह दिया और मैं चले गए इतना ही उत्तर उनका शास्त्र है वो एक ही शब्द का शास्त्र है। तो शास्त्र खोल दिया, पहला पासून है। ये मूर्खता होगी, अज्ञानता होगी, ये धर्म नहीं है, अति मूर्खता है। ये मूर्खता का काम जैन नहीं करता, जैनी ज्ञानी माना जाता है, मूर्ख नहीं होता है वो। अज्ञानता का काम कभी भी करता नहीं, ज्ञानी बनकर हर कदम उठाता है। एक कदम उठा करके उधर रखना है तो पहले सोचता है, विचार करता है, सत्य क्या है असत्य क्या है, उचित क्या है अनुचित क्या है, ज्ञान क्या है अज्ञान क्या है, मार्ग क्या है कुमार्ग क्या है। सोच सोच करके कदम रखता है, फूंक फूंक करके कदम रखता है। एक कदम रखने के लिए भी फूंक करके रखना पड़ता है, उसको कहते हैं जैन श्रावक, जैन श्राविका। हाँ बन तो गए, लेकिन अब बनाओ सबको, ज्ञान दो, स्वाध्याय करो, इस सम्यक ज्ञान का प्रसारण करो। ये जिन वाणी है ये भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी गुरु के माध्यम से मिल गई तो इसका प्रसारण करो। अब घर में समझाओ, देवों का आहार कौन सा, देवों के वस्त्र कौन से, हमारे चलते हैं क्या नहीं, हमारा आहार चलता है क्या नहीं। चर्चा तो किया करो, चर्चा करते ही नहीं करते? उनका आहार कौन सा, हमारा आहार कौन सा, उनके वस्त्र कौन से, हमारे वस्त्र कौन से, इसकी चर्चा होगी तो बच्चों में मिथ्या तो नहीं आएगा, वो ऑटोमेटिक सम्यक ज्ञानी हो जाएंगे। बिल्कुल टाइम हो गया जिनवानी।
प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से